हिंदी कहानी की परंपरा और 18 कहानियां साहित्य के विभिन्न रूपों में कहानी को अपने विधागत गुणों के चलते अधिक लोकप्रियता मिली है। कहानी की सुदीर्घ परंपरा के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि कहानी ने वैविध्य, कलात्मकता और विस्तार को अल्प उतार चढ़ाव में ही अर्जित किया है। कविता को साहित्य की मूल विधा माना जाता है, पर कथा की समानांतर और सहवर्ती या पूरक सत्ता आदि समय से ही रही है। प्राचीन महाकाव्य कविता और कथा के समन्वय से रचे गए थे, इस अर्थ में कहानी आदि विधा है। कहानी वैसे भी सर्वकालिक है, कब और कहां जन्मी किसे पता, उसकी एक विरासत हर देश और जात में मिलेगी। भारत जैसे महादेश में इसकी समृद्ध विरासत पर भला किसे संदेह होगा। अतः साहित्य की आधुनिक गद्य विधाओं में हिंदी कहानी की परंपरा प्राचीन भारतीय प्राचीन साहित्य, लोक कथा और आख्यानों की वाचिक परंपरा से गहरे सूत्रबद्ध है। इस विरासत को जब पश्चिमी कहानी के रूप विन्यास और कला का प्रभाव मिला तो कहानी सृजन की नवीन आधुनिक विधा के रूप में प्रस्फुटित हुई। शीघ्र ही हिंदी कहानी तर्कातीत, अति प्राकृत, अति रंजित और उपदेश शिक्षा की आस्थाओं के युग से निकलकर तर्कसंगत विचारों और सृजन विवेक के आलोक में गतिशील होने लगी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 कहानी को हिंदी की पहली कहानी मान लिया जाए तो 20वीं सदी हिंदी कहानी की कीर्ति शताब्दी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था 1915, कहानी को उसकी शैशवकालीन कलात्मक अपरिपक्वता से छुटकारा दिलाकर उसका गौरव स्थापित करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में तदयुगीन महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच पवित्र प्रेम, आत्मत्याग और बलिदान के आदर्श और उदात्त रूप का उद्घाटन अपने विलक्षण परिणत में बेजोड़ है। कथा वस्तु के अनुरूप शिल्प विधान और भाषा के प्रौढ़ प्रयोगों का संगठन द्विवेदी युगीन नैतिक आग्रहों के बीच तब रचनात्मक साहस के रूप में देखा गया था। हिंदी कहानी की विकास यात्रा की साक्षी बनी सरस्वती पत्रिका में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। भारतीय परंपरा में जीवन के उदात्त रूपों की मार्मिक व्यंजना गुलेरी जी ने भावना और कलात्मकता के ऐसे सधे रूप में की है कि कई विद्वान हिंदी कहानी के स्वतंत्र विकास का पहला प्रस्थान इसी कहानी से मानने के पक्ष में है। गुलेरी जी की प्रकाशित कहानियां 3 ही हैं, पर उसने कहा था कि जोड़ की वे कोई कहानी नहीं लिख सके। उनके समकालीन कहानीकार भी इस उपलब्धि को अतिक्रमित नहीं कर सके। कहानी के आरंभिक युग में गुलेरी जी को हिंदी की कालजयी कहानी लिखने का श्रेय मिला। आज 95 सालों के बाद भी इस कहानी की पठनीयता, उसकी कलात्मकता और वस्तुगत महत्ता जरा भी कम नहीं हुई है। हिंदी कहानी के संपर्क में आने वाली लगभग हर पीढ़ी की स्मृतियों में गुलेरी जी सिर्फ उसने कहा था के कारण रहे हैं और बने भी रहेंगे। अतः इस संग्रह का पहला पाठ इसी कहानी से हुआ है। हिंदी कहानी में ऐसे उदाहरण विरल ही हैं कि किसी कहानीकार की एक ही कहानी ने युगांतर उपस्थित कर दिया हो। यह कहानी के उषा काल में तो अद्भुत और चमत्कारी ही है, आगे की हिंदी कहानी को अपनी रचनात्मक चुनौती स्वीकार करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हिंदी कहानी को साहित्यिक प्रवृत्ता की ओर अग्रसर करने में इस चुनौती को निभाने वाले 2 कथाकार प्रेमचंद और प्रसाद हैं। ये दोनों कथाकार जो भिन्न कथा भाषा, चिंतन और कथा दृश्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुलेरी, प्रेमचंद और प्रसाद समकालीन ही हैं, पर गुलेरी के पश्चात युगांतकारी प्रवर्तन प्रेमचंद ने ही किया। हिंदी कहानी में प्रेमचंद के समानांतर प्रसाद का अवदान कम भले हो, पर वे अपने रचनात्मक रुझानों में कहानी के लिए भी प्रयत्नशील रहे। प्रेमचंद की ने कहानी पर अतीत जीविता, कल्पना और रोमांटिक आदर्श के झिलमिलाते आवरण को हटाकर उसकी राह बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया। कथा वस्तु, भाषा और रचना शिल्प के स्तर पर ये बदलाव प्रसाद से भिन्न धरातल पर हैं। इसलिए उन्हें सुविधा से जानने के लिए सामाजिक यथार्थवादी और समाजोन्मुख चेतना का प्रस्तोता मान लिया गया है। जाहिर है तब जब संकल्प साहब को उनके कवि और नाटककार के सर्जक के अनुरूप ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मनुष्य के भाव संवेदन से जुड़ने वाली परंपरा का प्रस्तोता माना गया। प्रेमचंद और प्रसाद से आरंभ होने वाली 2 तरह की कथा परंपराएं बोध और अध्ययन की सुविधा देती हैं, पर यह स्थूल विभाजन एक दूसरे के यहाँ प्रविष्ट भी होता है। तात्पर्य कि व्यक्ति के अंतर्मन की कहानी को कहते हुए प्रसाद कतिपय सामाजिक संदर्भ भी जोड़ते दिखते हैं और प्रेमचंद बाह्य सामाजिक यथार्थ पर व्यापक दृष्टिपात करते हुए व्यक्ति के अंतःकरण में भी झांकते हैं। ऐसा नहीं कि एक का दूसरे में अभाव है। प्रश्न भाव और यथार्थ की प्राथमिकता और व्यापकता का है। दोनों के यहाँ रचना दृष्टि की भिन्नता होते हुए भी समानता आदर्श भावना के प्रतिपादन की है, जिसका संबंध कहीं न कहीं पराधीन भारत की मुक्ति के स्वप्न से जुड़ा है। प्रेमचंद की कथा संवेदना की व्यापकता में पूरा सामाजिक परिवेश अपनी समकालीन चुनौतियों के साथ संबद्ध होता है। वे उन्हें मानवीय सरोकारों से जोड़ते हैं और उनके घटित प्रभावों की गहरी अंतर्दृष्टि से आलोचना करते हैं। विशुद्ध रूप से गद्यकार होने और विचारों की सघनता के कारण उनकी कहानी कला में विचार का पुट अधिक गहराया है। हालांकि उनकी आरंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण होते हुए भी लेखकीय आग्रह अस्थिर सुधारवादी दृष्टि और आदर्श निरूपण के रूप में आया। आलोचकों ने इसे उनकी कहानी कला की कमजोरी बताया है, जिसे उन्होंने कहानी लेखन के उत्तरार्ध में दूर भी कर लिया था। उनकी रचना दृष्टि और रचना शिल्प का यह अपूर्व परिवर्तन शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन जैसी यथार्थवादी कलात्मक कहानियों में परिलक्षित भी हुआ। यहाँ आदर्श समाधान और वांछनीय शुभ के चुनाव का कोई लेखकीय आग्रह नहीं है। हिंदी कहानी में प्रेमचंद का ऐतिहासिक महत्व सर्वाधिक इसलिए है कि उन्होंने जन सरोकारों और जन भाषा को सृजन के शिखर पर स्थापित किया। यह अकारण नहीं कि उनके बाद वाली पीढ़ियां उन्हें मानक प्रस्थान या प्रेरक मानती रही हैं। परवर्ती हिंदी कहानी पर उनके व्यापक प्रभावों को शायद ही कोई अस्वीकार करे। यहाँ संकलित प्रेमचंद की बहुत चर्चित बहुप्रशंसित कहानी कफन उनके द्वारा कायम यथार्थवादी परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी की सांकेतिक अर्थवत्ता नए ऐतिहासिक सत्य का साक्षात्कार कराती है। इसे पढ़ते हुए पहले पहल घीसु और माधव की वेहयाई और अमानवीयता पर गुस्सा आता है, पर कहानीकार का आक्रोश बिंदु यह नहीं बल्कि वह पूंजीवादी सामंतवादी वर्ग विषमता है, जिसके शोषक चरित्र ने ही घीसु माधव के वर्ग में व्यक्तित्वहीनता को जना है। उनके नैतिक पतन की पशुवत निष्प्रियता का उत्स जहाँ है, प्रेमचंद पाठक को वहाँ ले जाते हैं। तब घीसु माधव उतने निरीह और सहानुभूत के पात्र भी लगने लगते हैं। वे पाठक की चिंता में संवेदना की जगह पाते हैं। प्रेमचंद इस कहानी में उन कारणों की तलाश कर पाने में सफल होते हैं जिनसे घीसु या माधव जैसा वर्ग पनपा है। इस कहानी में प्रेमचंद ने उनके लिए बड़ा ही मार्मिक वाक्य लिखा है। उसे कहानी के विजन का आधार भी कहा जा सकता है। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। इस कहानी में अनहोनापन भी है और यथार्थ होते हुए भी अयथार्थ भी, पर यह कला की कमजोरी नहीं, अभिहित कथ्य को उभारने के लिए अनुगामी है। अकारण नहीं कि किसी आधुनिकता बोध की पहली नई कहानी के विशेषणों द्वारा स्वीकृत मिली है। कफन प्रकारांतर से चर्चा और विवादों से घिरी रही है। कई बार प्रासंगिक बहस इसके नए पाठ से उभरी तो कभी कुपाठ ने भ्रामक अवधारणाएं उछाली। जाहिर है इस कहानी की अपनी आंतरिक शक्ति और लेखकीय दृष्टि की परिपक्वता है, जो इसे कभी अप्रासंगिक नहीं होने देती। सिर्फ इसी कहानी को लेकर प्रेमचंद आज भी चुनौती की तरह अडिग हैं। उन्होंने यह कहानी बड़े ही कलात्मक संयम से रची है। यहीं से हिंदी कहानी का एक सुनिश्चित प्रस्थान सर्वमान्य है। प्रसाद की कहानियों में आदर्श भावना रोमांटिक रुझानों में अभिव्यक्त हुई है। उनकी कहानियों में प्रायः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गौरवशाली सांस्कृतिक पक्ष की खोज है। वे प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थ भूमि से भिन्न रोमांटिक आदर्शवाद की स्थापना विशिष्ट चरित्रों के माध्यम से करते हैं। समर्पण और उत्सर्ग की भावना उनके चरित्रों की मूल विशेषता है। अपने आंतरिक मनोद्वंद में वे प्रायः त्याग, बलिदान, सेवा, सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों के पक्ष में ही अपने जीवन की सार्थकता निरूपित करते हैं। प्रेम का एक उदात्त मानवीय स्वरूप उनकी कहानियों में प्रतिफलित होता है, जो निजत्व की सीमा लांघकर राष्ट्रीयता के विराट मूल्यों की ओर उन्मुख है। यही उनकी कहानियों का मूल तर्क प्रतीत होता है। प्रसाद मूलतः स्वच्छंदतावादी छायावादी चेतना के कवि हैं, अतः इस चेतना का उदात्त स्वरूप उनकी कहानियों में भी प्रतिबिंबित हुआ है। वस्तुतः वे ऐतिहासिक कथानक में कल्पना से जिन चरित्रों की कथा कहते हैं, वह अपने समय संदर्भों में उनके होने की अप्रत्यक्ष सांकेतिक महत्ता है। वे उनके द्वारा स्वाधीन आंदोलन के समानांतर राष्ट्रीय चेतना की व्यापक भूमि निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हिंदी कहानी में प्रसाद एक सजग कला निष्ठा के प्रतिमान बनकर खड़े हैं। अपनी रचना वस्तु के अनुरूप ही उन्होंने भाषा और शिल्प का निर्माण भी किया है। प्रसाद की कहानी कला की प्राय सभी विशेषताएं यहाँ संकलित गुंडा कहानी में परिलक्षित होती हैं। उनकी कर्मस्थली काशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वहाँ के इतिहास की राजनीतिक उथल पुथल के बीच ननकू सिंह के शौर्यपूर्ण बलिदान की कथा के कारण ही यह प्रसाद की प्रतिनिधित्व कहानी नहीं है। सामान्यतः अन्य महत्वपूर्ण कहानियों से यह सर्वथा भिन्न कथानक की अंतरधारा समय संदर्भों के कई सूत्रों को संबद्ध करती है। इस संदर्भ में आलोचक अजय तिवारी का यह कथन उद्धृत करना प्रासंगिक है। अतीत और वर्तमान, सामंती उत्पीड़न और साम्राज्यवादी निरंकुशता, ननकू जैसे बहिष्कृत चरित्रों का शौर्य और बनारस का सांस्कृतिक जीवन, धनी वर्ग की कायरता और गद्दारी तथा दुलारी जैसे उपेक्षित चरित्रों की मानवीयता और खुददारी, भारतीय समाज का ऐतिहासिक संक्रमण और सांप्रदायिक प्रश्न, इसलिए गुंडा का कथानक बहुत सीधा साधा नहीं है। वह एक संश्लिष्ट जीवन प्रक्रिया का चित्रण करने वाला जटिल कथानक है। पन्ना, दुलारी और ननकू के चरित्रों में भी वैसी ही जटिलता है। तीनों में स्नेह की अव्यक्त अंतरधारा है। वह अव्यक्त है, इसलिए रोमांटिक प्रवाह होने पर भी भावुकता का स्वर नहीं है। गुंडा का उदय पतनशील सामंती समाज की देन था। गुंडा की मृत्यु रोमांटिक संवेदना की मृत्यु है। वह एक नए यथार्थवाद का द्वार है। व्यक्तिगत शौर्यत्व के पटाक्षेप का युग, वर्तमान साहित्य शताब्दी, कथा विशेषांक, जनवरी फरवरी 2000, पृष्ठ 441। प्रसाद को प्रेमचंद के समानांतर रख कर देखने की रूढ़ परंपरा कभी कभी अपर्याप्त सिद्ध होती है। स्वतंत्र रूप से देखने पर उनकी कहानियों का मूल्य आंका जा सकता है। प्रसाद की विशिष्टता अपनी मौलिकता को लेकर है। उनकी कहानियों में दो परस्पर भावनाओं का द्वंद्व जिस संवेदना की सृष्टि करता है, वह उनकी कहानी का प्राण चेतना है और पात्रों की व्यक्तिगत निष्ठा भी। हिंदी कहानी को भव्यता के भाव संवेदन तक लाने का श्रेय प्रसाद को ही है। प्रेमचंदोत्तर युग में हिंदी कहानी प्रसाद और प्रेमचंद की कहानी कला के आलोक में ही अग्रसर होती है। इस दौर में जैनेन्द्र, अजय, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, अमृत लाल नागर, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, चंद्र किरण, सौन रेक्षा आज कहानी को नए पड़ाव पर पहुंचाते हैं। यहां प्रसाद और प्रेमचंद की परंपराओं की अगली कड़ियां नजर आने लगती हैं। जैनेन्द्र कुमार इस युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। उनके कहानीकार के मानस रचाव में प्रसाद की कहानी परंपरा की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। भूमिका कथा बोध की है, राह उनकी भिन्न है। सामान्यतः यह राह प्रेमचंद के अनुवर्ती नहीं है, जबकि वे प्रेमचंद के निकट संपर्क में थे। प्रेमचंद ने प्राय समाज के बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति को महत्ता दी, वहीं जैनेन्द्र ने व्यक्ति के अंतर्मन की सूक्ष्मता का अनुशीलन किया। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद ने भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष की अवहेलना नहीं की है, लेकिन वहाँ वह साधन है, साध्य नहीं। प्रेमचंद के यहाँ जो साधन है, वही जैनेन्द्र के यहाँ साध्य है। जैनेन्द्र के यहाँ सामाजिक अंतर्वस्त्र या सामाजिक संदर्भ मनोवैज्ञानिक भूमिका पर जाकर स्थापित होते हैं। वे व्यक्ति की संक्रांत मनोस्थितियों के कहानीकार हैं। कभी कभी एक दार्शनिकता का बोध भी शामिल होता है। कथाकार राजेंद्र यादव ने काम, प्रेम और परिवार उनकी चिंता के मूल विषय बताए हैं। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद की सलाह मानकर अपनी स्वतंत्र राह निर्मित की, इसलिए वे प्रेमचंद की परंपरा के वाहक नहीं, उनसे टकराहट करने वाले कहानीकार माने जाते हैं।